दिन भर 9 अक्टूबर दिन सोमवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। गुजरात हाईकोर्ट में गोधरा हत्याकांड में पलटा एसआईटी कोर्ट का फैसला, उम्र कैद में बदली 11 दोषियों की मौत की सजा।
और अभी तो कोर्ट ने सब साक्षियों की जो जुबानी है उसमें आई विटनेसेस की जुबानी मानी हुई है, पैसेंजर्स की जुबानी मानी हुई है, वो रेलवे स्टाफ की जुबानी मानी हुई है।
बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे की कंपनी के कारोबार को लेकर जारी है बयानबाजी, उठे सवाल, क्या मीडिया को डराने की हो रही है कोशिश?
रिपोर्टा जो हो रही है वहाँ पे लिटरली एक कोशिश जारी है कि आप लॉ कोर्ट को यूज करके क्रिमिनल डेफोमेशन का इस्तेमाल करके जर्नलिस्टों को चुप कराएं।
और अमेरिका के रिचर्ड थेलर को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। होंगे आपके पत्र भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, कुलदीप मिश्र से। गोधरा कांड में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों के मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है, जबकि 20 लोगों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार को इस घटना में मरने वालों के परिवारों को 10 लाख का मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में अपने कर्मचारियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा घटाने पर विचार कर रहा है। इस साल यहां हुए चरमपंथी हमलों में उसके 7 कर्मचारियों की मौत हो गई थी और कई कर्मचारी अगवा भी कर लिए गए थे। अफगानिस्तान में ICRC प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख मोनिका जेनारेली ने BBC से कहा कि यह एक कष्ट भरा फैसला है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि उत्तरी अफगानिस्तान में लोगों को अब संस्था की मदद नहीं मिल पाएगी। उन्होंने कहा,
After internal discussions with our highest level at the headquarters,
हमारे मुख्यालय में उच्च स्तर पर आंतरिक चर्चाओं के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि हमारे पास अपनी मौजूदगी और गतिविधियों को कम करने के सिवा कोई और चारा नहीं है, खासतौर से उत्तरी अफगानिस्तान में। ये थी अफगानिस्तान में ICRC प्रतिनिधिमंडल की प्रमुख मोनिका जेनारेली। इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के रिचर्ड थेलर को दिया जाएगा। इंसानी मनोविज्ञान किस तरह आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करता है, इस विषय पर उन्होंने काम किया है। प्रोफेसर थेलर ऑस्कर विजेता फिल्म द बिग शॉट में अपनी ही एक छोटी सी भूमिका में दिखे थे, जिसमें वो ये बताते हैं कि कैसे जीत का सिलसिला लोगों के फैसलों को प्रभावित कर सकता है। दो प्रमुख स्पेनिश पार्टियों ने कैटलन अलगाववादी नेता कार्लस पुजीमोंट पर आज़ादी का ऐलान न करने का दबाव बढ़ा दिया है। पुजीमोंट मंगलवार को कैटलन संसद सत्र को संबोधित करेंगे। उधर फ्रांस सरकार के यूरोपीय मामलों की मंत्री नताली लुआजू ने कहा है कि अगर कैटलोनिया स्पेन से आज़ादी का एक तरफा ऐलान करता है तो फ्रांस इस आज़ादी को मान्यता नहीं देगा। फ्रेंच टेलीविज़न सी न्यूज़ से उन्होंने कहा कि 8 दिन पहले हुआ जनमत संग्रह स्पेन के संविधान के मुताबिक अवैध था। उन्होंने कहा कि कैटलोनिया की तरफ से आज़ादी का ऐलान उसे स्वतः ही यूरोपीय संघ से बाहर कर देगा, जिसने पहले ही जनमत संग्रह की आलोचना की है। नताली लुआजू ने कहा, जरूरी यह है कि इस संकट का हल स्पेन की राजनीति में सभी स्तरों पर बातचीत के जरिए निकाला जाए। अगर आज़ादी का ऐलान होता है तो वह एक तरफा होगा और वह मान्य नहीं होगा, और यह बात सब जानते हैं। कार्लस पुजीमोंट भी यह बात अच्छी तरह जानते हैं। ये थे फ्रांस सरकार के यूरोपीय मामलों की मंत्री नताली लुआजू के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने ऐलान किया है कि उनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी अपनी सहयोगी बेवेरियन पार्टी के साथ इस पर एकमत हुई है कि एक साल में अधिकतम 2 लाख प्रवासियों को ही जर्मनी में प्रवेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि वह इस समझौते से खुश हैं कि जो कि शरणार्थियों के आग्रह पर विचार करने के संवैधानिक दायित्व की भी अनदेखी नहीं करता है। इस समझौते से मर्केल की अगुवाई वाले गठबंधन को बाकी पार्टियों से गठबंधन की बातचीत करने में आसानी होगी। 2015 के शरणार्थी संकट में जर्मनी ने करीब 10 लाख शरणार्थियों को जगह दी थी। दक्षिण अफ्रीका में सरकारी वकीलों ने उस महिला से हत्या के आरोप वापस ले लिए हैं जिस पर अपनी बेटी से बलात्कार करने वाले की हत्या का आरोप था। वकीलों ने कहा है कि सफल अभियोजन के आसार बहुत कम थे। दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप के ग्रामीण इलाके से ताल्लुक रखने वाली महिला को पिछले महीने गिरफ्तार किया गया था जब उसने अपनी 27 वर्षीय बेटी से सामूहिक बलात्कार करने वाले एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी और 2 अन्य को घायल कर दिया था। कई नागरिकों ने महिला का पक्ष लिया था और मुकदमे के खर्च के लिए लोगों से चंदा जुटाना भी शुरू कर दिया था। BBC समाचार।
BBC हिंदी से दिन की दूसरी सभा। दिन भर सुन रहे सभी श्रोताओं को वात्सल्य राय का नमस्कार। ये कार्यक्रम आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com, मोबाइल और फेसबुक पर भी सुन सकते हैं लाइव। दिन भर में सबसे पहले बात गुजरात हाई कोर्ट के फैसले की। जैसा कि अभी आपने समाचारों में कुलदीप मिश्र से सुना, गुजरात हाई कोर्ट ने गोधरा हत्याकांड में दोषी करार दिए गए 11 लोगों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। कोर्ट ने 15 साल पुराने इस मामले में 20 लोगों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। हाई कोर्ट ने तत्कालीन राज्य सरकार को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की है। एक रिपोर्ट के साथ अहमदाबाद से हमारे सहयोगी रॉक्सी छारा।
गुजरात हाई कोर्ट ने साल 2002 के गोधरा मामले में दोषी ठहराए गए 11 लोगों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने फांसी की सजा पाए इन 11 लोगों की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। साल 2011 में SIT की एक विशेष अदालत ने इन्हें मौत की सजा सुनाई थी। इन सभी लोगों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट के फैसले के बाद SIT के वकील JM पंचाल ने BBC से बात की।
और अभी तो कोर्ट ने सब साक्षियों की जो जुबानी है उसमें आई विटनेसेस की जुबानी मानी हुई है, पैसेंजर्स की जुबानी मानी हुई है, फिर वो रेलवे स्टाफ की जुबानी मानी हुई है और वो SSL की जुबानी भी जो एविडेंस था वो भी माना हुआ है।
गुजरात के गोधरा में 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। आग की वजह से ट्रेन में सवार 59 लोगों की मौत हो गई थी। इनमें से ज़्यादातर अयोध्या से लौट रहे कार सेवक थे। राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना को पूर्व नियोजित घटना बताया था और इसके चलते गुजरात में 2002 में सांप्रदायिक दंगे भी हुए थे। इस मामले में SIT की विशेष अदालत ने 20 अन्य लोगों को दोषी ठहराते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने उनकी उम्र कैद की सजा बरकरार रखी है। बचाव पक्ष के वकील KG शेख का कहना है कि इस जजमेंट से ये साफ हो गया है कि कोर्ट ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना है। एडवोकेट KG शेख:
तो फर्स्ट इम्पैक्ट तो ये है कि हाई कोर्ट ने इस केस को नहीं समझा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। दूसरी बात ये है कि उसके लिए ये एक राहत की बात है कि जो लोगों को फांसी की सजा थी उनके लिए एक आशा की किरण है। कोर्ट में ने लाइफ सेंटेंस के साथ ये नहीं लिखा है कि लाइफ टिल लास्ट ब्रीथ, लाइफ सेंटेंस तीन लाख ज्यादा नहीं लिखा है, इसलिए इनके लिए चांस है अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो इनको 14 इयर्स में छोड़ सकती है।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में राज्य सरकार से कहा है कि वो इस घटना में मरने वालों के परिजनों को 10 लाख का मुआवजा दें। रॉक्सी गागडेकर छारा, BBC अहमदाबाद।
गोधरा ट्रेन हत्याकांड मामले में जिन 11 लोगों की मौत की सजा को हाईकोर्ट ने उम्र कैद में बदला है उनमें से एक है गोधरा के रमजानी। फैसले के बाद हमने रमजानी की बेटी नूरजहां से बात की और उनकी प्रतिक्रिया जाननी चाहा।
मारा पप्पा ने आउ थयो तो हमने थोड़ो बहु आनंद थयो पण घरे आई जाय त्यारे हमने बहु आनंद लागी। परिवार का तो हाल तो बहुत खराब है हमारा, क्या कहे हमारे घर तो 15 साल से हमारा बाप तो घर ही नहीं, हमारा तो किराया का मकान है। हम सब लोग कचरा पोतू करते हैं, भाई मेरे हैं छोटे, बर्तन धोते हैं, कपड़े धोते हैं, हमारी समाज जाती है।
नूरजा का कहना है कि वो और उनके परिवार के बाकी सदस्य फैसले से बहुत खुश हैं। रमजानी के परिवार में उनकी पत्नी और 6 बच्चे हैं, नूरजा उनमें सबसे बड़ी हैं। उनका कहना है कि उन्हें परिवार चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है और उनके पिता का मामला समाज के लोगों ने ही देखा। गोधरा का ये मामला साल 2002 का है। इस मामले में कब क्या हुआ इसकी जानकारी दे रहे हैं BBC संवाददाता विनीत खरे और सुशीला सिंह।
27 फरवरी 2002 को गोधरा स्टेशन पर साबरमती एक्सप्रेस के S6 कोच में आग लगा दी गई।
आग की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई, इनमें से ज्यादातर कार सेवक थे और अयोध्या से लौट रहे थे।
इसके बाद गुजरात में दंगे भड़के और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच SIT को सौंपी।
जून 2009 में SIT की विशेष अदालत में सुनवाई शुरू हुई।
इस मामले में कुल 94 लोगों पर आरोप लगाए गए।
1 मार्च 2011 को SIT कोर्ट ने ट्रेन जलाने के मामले में 31 लोगों को दोषी ठहराया।
इनमें से 11 लोगों को मौत की सजा दी गई, जबकि 20 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
कोर्ट ने 63 लोगों को बरी कर दिया।
बरी होने वालों में मौलवी सईद उमर जी भी थे। जांच में उनकी ओर मुख्य साजिशकर्ता होने का संकेत किया गया था, वे रिहा हो गए।
दोषी ठहराए गए लोगों ने हाई कोर्ट में अपील की।
9 अक्टूबर 2017 यानी आज गुजरात हाई कोर्ट ने 11 लोगों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। उम्र कैद पाए 20 लोगों की सजा को बरकरार रखा गया है।
जानकारी दे रहे थे विनीत खरे और सुशीला सिंह। न्यूज वेबसाइट द वायर की स्टोरी में दावा किया गया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी का कारोबार एक साल में 50,000 रुपए से 80 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। भारतीय जनता पार्टी ने इस खबर पर आपत्ति जताई है, वहीं कांग्रेस इसे लेकर बीजेपी से सवाल पूछ रही है। इस मामले को लेकर लगातार दूसरे दिन प्रतिक्रियाओं का दौर जारी रहा। एक रिपोर्ट के साथ सूर्यांशी पांडे।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों आने वाले गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए राज्य के दौरे पर हैं। नवसर्जन यात्रा के दौरान उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह से संबंधित विवाद पर आज फिर टिप्पणी की। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर चुटकी लेते हुए सवाल खड़े किए।
अमित शाह के बेटे की कंपनी 50,000 रुपए से जाकर 80 करोड़ की बनती है। यहाँ पे गुजरात में लोग व्यापार करते हैं, व्यापार को समझते हैं। यहाँ कोई है व्यापारी जिसने 3-4 हो ना भैया? बताओ, आपने 3-4 महीने में 50,000 रुपए से 80 करोड़ बनाया था? तो वही व्यक्ति जिसने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा, दूसरी भी बात बोली थी, मैं हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूँ, मैं चौकीदार बनना चाहता हूँ।
भारतीय जनता पार्टी ने इस रविवार को ही इस मामले में खबर छापने वाली वेबसाइट पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा करने का ऐलान किया। केंद्रीय मंत्री और पार्टी के नेता पीयूष गोयल ने इस खबर को बेबुनियाद बताया कि एक साल के भीतर ही जय शाह की एक कंपनी का टर्नओवर 50,000 रुपए से बढ़कर 80 करोड़ रुपए हो गया। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अब्दुल रशीद ने आज बीबीसी से बात करते हुए राहुल गांधी के सवालों को कुंठा का नतीजा कहा।
कि ये सब एक फ्रस्ट्रेशन जाहिर करता है, इस फ्रस्ट्रेशन से वो गुजर रहे हैं। 60 साल तक सत्ता की कुर्सी पे उनका परिवार बैठा रहा और उन्होंने भी बड़े ऊंचे सपने देखे होंगे, निश्चित बात है। और अब उनको सामने दिखाई दे रहा है कि कोई जमीन भी उनके लिए नहीं बच रही है। हर जगह उनकी पार्टी कमजोर हो रही है, सत्ता से दूर होती जा रही है। टीम फ्रस्ट्रेशन में होती है तो वो फाउल्स खेलती है।
राहुल गांधी के एक ट्वीट की भी चर्चा आज सोशल मीडिया पर होती रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे सवाल किया, मोदी जी जय शाह ज्यादा खा गया, आप चौकीदार थे या भागीदार, कुछ तो बोलिए। प्रधानमंत्री मोदी कई बार खुद को चौकीदार कहते रहे हैं। राहुल गांधी की टिप्पणी मोदी के उसी बयान पर थी। गुजरात में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जय शाह मामले से उपजा विवाद क्या विपक्ष को सत्ता में आने का मौका दे सकता है, या फिर इन आरोपों का बीजेपी करारा जवाब देगी? इस सवाल का जवाब इस वक्त देना मुश्किल है। बीबीसी दिल्ली से सूर्यांशी पांडे।
जय शाह को लेकर किए गए दावे को खारिज करने के लिए बीजेपी ने बेहद आक्रामक तरीका अपनाया। इसे लेकर हमारे सहयोगी प्रदीप कुमार ने वरिष्ठ पत्रकार हरतोष सिंह बल से बात की और सबसे पहले पूछा कि इस खबर पर बीजेपी की प्रतिक्रिया को वो किस तरह से देख रहे हैं।
कुछ फैक्ट्स इसमें सामने सीधे आते हैं कि उनकी रेवेन्यू 2014-15 की जो रेवेन्यू थी वो 50,000 रुपए की थी, वो अगले साल 80 करोड़ तक पहुंच गई। और ये उस साल में हुआ जो पहला साल था जहां पे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर थे। जहां पे बात आती है कि एक सीनियर पॉलिटिशियन बीजेपी के पार्टी प्रेसिडेंट के लड़के के बिजनेस में जब इतना इजाफा हो जाए तो ये एक जायज स्टोरी है। ये स्टोरी पब्लिक इंटरेस्ट में है। इसको लेके ये कहना कि ये गलत है, डेफेमेटरी है, एकदम सरासर गलत है। इस पे अगर कोई टिप्पणी करनी थी तो बीजेपी को ऑन रिकॉर्ड जो भी फैक्ट्स थे वो रिवील कर देने चाहिए थे। जिस आदमी ने लोन दिया, लोन्स के क्या फैक्ट थे वो रिवील कर देने चाहिए थे। स्टोरी अपने आप बीजेपी की पक्ष और जिसने लोन दिया उसका पक्ष भी सामने आता। पक्ष इसलिए सामने नहीं आया कि उन्होंने ये पक्ष दिया नहीं। अब जहां पे बात आती है कि बाकी मीडिया इसे क्यों नहीं रिपोर्ट कर रही, ये तो हमने पिछले 3-4 साल में देखा है कि एक कंसेंसस बना हुआ है जिसमें मास मीडिया ने अपना रोल पूरा एब्डिकेट कर दिया है। कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के थ्रू डायरेक्टली सरकार ओनरशिप के थ्रू मीडिया का कंटेंट लिटरली कंट्रोल कर रही है। आपको इस सरकार की क्रिटिसिज्म या उसकी खामियों के बारे कोई रिपोर्ट आज बहुत ही कम मिलती है। और ये मैं अफवाहों पे नहीं कह रहा हूँ, जो छोटे आउटफिट्स हैं रिपोर्ट जो हो रही है वहां पे लिटरली एक कोशिश जारी है कि आप लॉ कोर्ट्स को यूज करके क्रिमिनल डेफोमेशन का इस्तेमाल करके जर्नलिस्टों को चुप कराएं। जहां तक कॉर्पोरेट्स की बात है या बिजनेसमैन है जैसे जय शाह है, अमित शाह के लड़के, वो क्रिमिनली कैसे डिफेम हो सकते हैं? अगर स्टोरी से उन्हें लगता है कि उनके बिजनेस में कोई दिक्कत आई है तो वो जाएं सिविल डेफेमेशन का केस करें। इसमें क्रिमिनल क्या है, सामने फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स वो डिस्प्यूट कर रहे हैं, उनका बिजनेस में कोई डैमेज हुआ है तो वो सिविल उसमें रिस्पाइट लें। तो ये तो जान के डरा के धमकाने की एक तरीका है।
जिस तरह से कल पीयूष गोयल साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको किस रूप में देखते हैं? हालांकि कई लोगों का ये कहना है कि जब रॉबर्ट वाड्रा पे भी ऐसे आरोप आए थे तो यूपीए सरकार के मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।
जहां पे बात ये है कि जी जो ओरिजिनल फिनोमेना है कि मंत्री या सरकार प्राइवेट इंडिविजुअल्स या जो अपने आप को प्राइवेट इंडिविजुअल्स कहते हैं जैसे रॉबर्ट वाड्रा है या जय शाह, उनके बिहाफ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये कांग्रेस ने भी किया था, बीजेपी भी कर रही है। ये वही बात है 84-2002 को तुमने ये किया, तुमने ये किया, मैंने ये किया को लेके जो तू तो मैं होती है। पर इसके बाद जहां बात आती है, जब कांग्रेस के समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, रिपोर्ट्स निकली थी, तो मीडिया में कवरेज देखी, कांग्रेस की करप्शन के बारे सबसे ज्यादा खुल के लिखा था उसी मीडिया जिसको आप कहते हैं आज लिबरल मीडिया कहते हैं, जिनको लिप्टार्ड कहते हैं या प्रेस्टिट्यूट कहते हैं, उन्हीं ने खुल के लिखा था सबसे ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ। वही मीडिया आज बीजेपी के खिलाफ भी लिख रही है, आज बीजेपी उन पे नाम लगा रही है। ये खतरा बहुत बड़ा है, पर अगर हम सोचें ये खतरा 2014 से शुरू हुआ है तो ये गलत है। ये खतरा एक पूर्ण रूप से अब हमारे सामने बड़े तौर पे आ गया है, पर ये खतरा कांग्रेस के टाइम पे भी मौजूद था। ये स्ट्रक्चरल खतरा है जो हमने अपने लिए मीडिया बना लिए है, जिसमें बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेसमैन मीडिया चलाते हैं, उनके अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं, वो सरकार से मैनिपुलेट हो सकते हैं। ये एक पिछले 20-25-30 साल से ये फिनोमेना हमारे सामने आया हुआ है। इसको मोदी सरकार ने किसी भी सरकार से ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल किया है और मीडिया को चुप कराया है।
ये थे हरदोष सिंह बल और उनसे बात कर रहे थे हमारे साथी प्रदीप कुमार। और अब एक अंतर्राष्ट्रीय खबर। इस साल अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए अमेरिका के प्रोफेसर रिचर्ड थेलर को चुना गया है। इंसानी मनोविज्ञान आर्थिक फैसलों को कैसे प्रभावित करता है, ये समझाने में उनकी अहम भूमिका रही है। पुरस्कार के ऐलान के बाद प्रोफेसर थेलर ने कहा,
As the citation noted, one of my fields of research is what's called mental accounting.
प्रोफेसर रिचर्ड थेलर कह रहे थे कि मानपत्र में उल्लेख किया गया है, मेरे शोध का एक क्षेत्र मेंटल अकाउंटिंग है। मानक आर्थिक सिद्धांत के मुताबिक ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि किस तरह का पैसा कैसे खर्च होता है, इसलिए अगर मैं शिकागो के अर्थशास्त्री के तौर पर कहूं, तो मैं अपने आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं कहूंगा मैं जहां तक संभव होगा बिना सोच विचार के अपना धन खर्च करूंगा। ये थे प्रोफेसर रिचर्ड थेलर के शब्द। उधर फ्रांस की सरकार ने कहा है कि अगर कैटालोनिया ने एक तरफा तरीके से स्पेन से अपनी आज़ादी का ऐलान कर दिया तो उसे फ्रांस मान्यता नहीं देगा। इसे लेकर मैंने फ्रांस की राजधानी पेरिस में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार वैजू नरावने से बात की और सबसे पहले पूछा कि फ्रांस के इस बयान के जरिए क्या संकेत देने की कोशिश की है और इसके क्या मायने समझे जाने चाहिए।
देखिए, एक तो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तरफ से भी इसको देखा जाना चाहिए, क्योंकि फ्रांस में भी अपना प्रॉब्लम है जो है कॉर्सिका का। वो एक जो टापू है फ्रांस के खिलाफ है और जहां पर बहुत सारी प्रो इंडिपेंडेंट एक्टिविटी हो रही है, काफी सालों से हुई है, तो वहां पे काफी बार बम छूटते हैं, कभी कभी कत्ल भी हो जाते हैं पुलिस वालों को या म्यूनिसिपल वर्कर्स को। तो इस स्पेन के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को एनकरेज करके फ्रांस अपने यहाँ जो हो रहा है उसको चेतावनी नहीं देना चाहता, इनके लिए ये एक बात हो गई है। दूसरी तरफ उनके यहाँ दूसरे भी कोई प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ब्रिटनी है, वो कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज ब्रेटन जो है उसको रिकग्निशन आनी चाहिए। तो फ्रांस जो है एकदम सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट में बिलीव करता है।
और अगर मैं स्पेन की बात करूं तो वहां जो कुछ आप देख रही हैं, जनमत संग्रह कैटालोनिया में हुआ, उसके बाद अब समर्थन में रैलियां निकाली जा रही हैं, स्पेन के साथ ही रहना चाहिए कैटालोनिया। दूसरी तरफ वहाँ राष्ट्रपति स्थानीय सरकार के हैं कैटालोनिया की, वो विशेष सत्र ये माना जा रहा है कि संबोधित कर सकते हैं जल्दी, वहाँ कुछ ऐलान हो सकता है।
जी हाँ, वैसे बहुत कंफ्यूजन इस वक्त हमें दिखाई दे रहा है कैटालोनिया में भी, क्योंकि एक तो उन्होंने रेफरेंडम किया, जिस रेफरेंडम को सेंट्रल मैड्रिड की गवर्नमेंट ने इलीगल ठहराया, क्योंकि वो कहते हैं कि पूरी स्पेन में एक कॉन्स्टिट्यूशन जारी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन सारी रीजन जो है स्पेन की उन्होंने एक्सेप्ट किया हुआ है। अभी यूनिलैटरली ये लोग नहीं कह सकते कि हम स्वतंत्र हो रहे हैं, हम अलग हो रहे हैं। और इसकी वजह से हालांकि जो उन्होंने रेफरेंडम किया उसमें सिर्फ 43% लोगों ने भाग लिया, और उन 43% लोगों की संख्या में से 92% लोगों ने कहा कि हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। फिर भी अगर हम वोट काउंट से देखे जाए तो उनको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिली है। और इस वक्त सारे जो लोग हैं, काफी सारे लोग, स्पैनिश लोग, कैटलोनियंस भी और मैड्रिड वाले कैस्टिलियंस भी कह रहे हैं कि हमें समझौता करके इसमें से कोई रास्ता निकालना चाहिए। स्पेन में अभी भी बहुत रीजन को ऑटोनॉमी दी जाती है, और उनके यहाँ एक और मूवमेंट है, एक और उनके रीजन में जो एटा करके कहलाता है, बास्क लोग हैं, उनका भी एक बहुत बड़ा सेपरेटिस्ट मूवमेंट जारी है, बहुत सालों से जारी है। उसमें कई हजार से ज्यादा लोग मर चुके हैं, वहां पे भी बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। इसलिए स्पेन में जो है नॉर्मली लोग कहते हैं कि हमें जैसे अभी हम इकट्ठा ठहर रहे हैं वैसे ही रहना चाहिए। ऑटोनॉमी की बात अलग चीज है, उनको जितनी ज्यादा रीजनल ऑटोनॉमी दी जा सकती है उतनी देनी चाहिए। लेकिन एक बात सही है कि मैड्रिड और मिस्टर रहॉय जो उनके प्राइम मिनिस्टर है और उनके जो राजा हैं फेलिपे, उन्होंने इस बात को ठीक से हैंडल नहीं किया है।
ये थी वैजू नरावने। इस बीच खबर आ रही है कि स्पेन की जो दो प्रमुख पार्टी हैं उन्होंने कैटलन के राष्ट्रपति के ऊपर दबाव बढ़ा दिया है कि वो जब कल संसद के विशेष सत्र को संबोधित करें तो आज़ादी का ऐलान ना करें। लेकिन वहाँ की जो विपक्षी पार्टी है, सोशलिस्ट लीडर उनके हैं, उनका ये कहना है कि अगर कैटलोनिया ऐसा कोई ऐलान करता है, स्पेन से अलग होने की बात करता है, तो उनका समर्थन उनके बीच रहेगा। इस बीच रैलियों और प्रदर्शनों का दौर भी वहां पर जारी है। और अब वक्त है आपकी राय का।
आपकी राय। नमस्कार, स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का। और आज मेरे साथ हैं।
नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पायल भुयन।
पायल भुयन से आप पहले परिचित हो चुके हैं, एक बार चिट्ठी आप मुझे याद पड़ता है आपने चिट्ठी एक बार प्रस्तुत की है।
जी
हाँ, तो आज आपके पास कौन कौन से ईमेल्स हैं, क्या चिट्ठियां हैं, पुलिंदा तो बहुत बड़ा है आपके पास।
जी बिल्कुल, और ईमेल से शुरुआत करते हैं।
जी,
पहला ईमेल, और ये श्रोता है हमारे, पहली बार इन्होंने चिट्ठी लिखी है। लिखते हैं अरबाब खान, गांव कराड़ा, स्वामी जी की ढाणी, भणियाणा, जैसलमेर, राजस्थान से लिखते हैं। आपको मेरा नमस्कार हो, आपको मैं ईमेल पहली बार भेज रहा हूँ। और ऐसा ही एक और ईमेल है, वो लिखते हैं मेरा नाम विकास प्रजापति है, मैं 12वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, मेरा गांव करथिया, पोस्ट बारपुर, जिला जौनपुर है।
देखिए, एक एक वाक्य की चिट्ठी लिखी है या ईमेल लिखा है इन दो साथियों ने। अरबाब खान, मैं तो देख सकता हूँ कि आप किसी ढाणी में राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बैठ करके हमारे कार्यक्रम सुनते होंगे, और पहली बार आपने ईमेल लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ और भी अपने दिल को खोल करके हमारे सामने रखिए तो पता चले कि आप क्या सोचते हैं। और जो दूसरे हमारे साथी हैं जो 12वीं कक्षा में पढ़ते हैं, उनका क्या नाम है? उनका नाम है विकास प्रजापति जी। तो विकास भाई, आप भी कुछ विस्तार से लिखिए, कौन से कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं, क्यों पसंद आते हैं, और आप हमसे क्या चाहते हैं। अरबाब खान साहब और विकास प्रजापति, आप दोनों का BBC परिवार में स्वागत है।
अगला ईमेल है मधुबनी बिहार से, मोहम्मद मेहताब आलम लिखते हैं, मैं 2010 से BBC सुनता आ रहा हूँ, अब बिहार के कुछ ही जिलों की खबर दिखाते हैं, कृपया बिहार की पूरी खबर बताने की कृपा करें।
देखिए, ये ऐसा तो कोई इरादा हमारा कभी था नहीं कि कुछ ही जिलों की खबर सुनाई जाए, और जहाँ जहाँ खबर होती है वहाँ से हम प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक सही, सटीक और भरोसेमंद खबर पहुँचे। तो सुनते रहिए लगातार कार्यक्रम।
अगला ईमेल किशनगंज से है, गौतम दत्त लिखते हैं, वसुतुल्ला खान की डायरी में आज पाकिस्तान और भारत के राजनीतिकों द्वारा इतिहास से छेड़छाड़ पर बहुत ही मजेदार ढंग से हमला किया गया।
जी, मैं भी सुन रहा था ये वसुतुल्ला खान साहब की डायरी, और जब वो डायरी प्रस्तुत कर रहे थे तो मैं एकदम अपनी जगह रुक गया, पूरी डायरी सुनी, उसके बाद मैं अपने काम पर लगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप वसुतुल्ला खान साहब इस कार्यक्रम को सुन ही रहे होंगे, उन तक आपकी बात पहुँच गई होगी, सुनते रहिएगा। अगर आप इसके बाद फिर से ईमेल लेंगी तो हमारे चिट्ठी लिखने वाले श्रोता नाराज हो जाएंगे, इसलिए एक दो चिट्ठियां आप ले लीजिए, फिर अगर कुछ ईमेल बचेंगी तो वो लेंगे।
जी बिल्कुल, चिट्ठियों की शुरुआत करते हैं। प्रमोद कुमार श्रीवास्तव अध्यक्ष भारतीय रेडियो श्रोता संघ के, साथ ही अर्जुन सिंह भदौरिया भी इसमें लिखते हैं, ग्राम कैथनपुरवा पोस्ट सातनपुरवा जिला अमेठी उत्तर प्रदेश से। ये बीबीसी हिंदी के पुराने श्रोता हैं, लिखते हैं कि 21 सितंबर को दिन भर कार्यक्रम में कुलदीप मिश्र की रिपोर्ट इनको काफी पसंद आई, सलीम रिजवी की भी इनको रिपोर्ट पसंद आई, इंदु जी का खेल समाचार इनको पसंद आया और साथ ही लिखते हैं वात्सल्य राय जी का सभा संचालन उन्हें शानदार लगा।
ये पोस्ट कार्ड इन्होंने भेजा है पीले रंग का जिसे मैं देख सकता हूँ, और पोस्ट कार्ड इनका बाद में आता है लेकिन इनका SMS मैसेज हर कार्यक्रम के बाद आ जाता है जिसमें हमें इनकी राय मालूम पड़ जाती है। ये बात अलग है कि उसको हम हर बार इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तो प्रमोद जी और भदौरिया साहब, आप कार्यक्रम सुनते रहिए, अपनी राय से हमें अवगत कराते रहिए। ये मत सोचिएगा कि आपकी राय हम तक पहुंचती नहीं है, जरूर पहुंचती है और हम उसे गंभीरता से लेते हैं।
अगली चिट्ठी है फारूक अब्दुल्ला की, लक्ष्मीपुर रक्सौल पूर्वी चंपारण बिहार से। लिखते हैं 26 सितंबर को प्रतीक्षा घिल्डियाल जी की रिपोर्ट इन्हें पसंद आई, कहते हैं रिपोर्ट इन्हें काफी मार्मिक लगी।
जी, प्रतीक्षा घिल्डियाल बांग्लादेश गई हुई थी जहाँ रोहिंग्या मुसलमानों की बदहाली पर उन्होंने बहुत ही अच्छी रिपोर्ट की थी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
अगली चिट्ठी अशोक कुमार ठाकुर की, ग्राम मालीटोल पोस्ट अदलपुर जिला दरभंगा बिहार से। लिखते हैं,
क्या लिखते हैं,
29 सितंबर को प्रसारित कार्यक्रम विवेचना की ये तारीफ करते हैं, लिखते हैं कि कार्यक्रम में सुब्रमण्यम स्वामी जी और उनकी पत्नी के बारे में काफी जानकारी मिली।
जी, रेहान फजल की ये विवेचना थी, हमेशा की तरह ही बहुत ही अद्भुत विवेचना। और कुछ चिट्ठियां मैं देख रहा था कि पिछले शुक्रवार को जो विवेचना प्रसारित हुई थी भारतीय फुटबॉल पे, उसकी भी तारीफ हुई है, लेकिन अब हमारे पास समय कम है, एक दो अगर ईमेल और ले लें आप।
तो जयश्री हेगड़े कोलगी सिद्धापुर उत्तर कनाडा कर्नाटक से लिखती हैं, अब तक बीबीसी अपने प्रसारण में अब रिपोर्ट भारत से का प्रयोग करते आया है, लेकिन आजकल एकाएक आपने, विशेषता राजेश आपके लिए है, भारत के बदले हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग शुरू करा है, इस बदलाव के पीछे का राज या फिर सच क्या है?
देखिए, भारत, इंडिया या हिंदुस्तान, ये एक ही देश के नाम हैं, और अगर आप सड़कों पे चलें उत्तर भारत में ख़ास तौर पे, तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ये हिंदुस्तान है। भारत भी बहुत सारे लोग कहते हैं, ज़्यादातर लोग कई बार इंडिया कहते हैं। तो ऐसा कोई इसमें नीतिगत फैसला नहीं है, जो ज़बान पे आता है, और हम तो वही ज़बान बोलते हैं जो सड़क पर चलने वाला इंसान बोलता है, हिंदुस्तानी, आम हिंदुस्तानी बोलता है। इसलिए आपको ये लगा होगा कि मैं भारत की जगह हिंदुस्तान क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, रवायत में चला आ रहा है तो हम हिंदुस्तान भी बोल देते हैं। अब समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है, इसलिए चलते चलते पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003, और ईमेल लिखना चाहें तो आपको पता मालूम ही है, एक बार फिर से नोट कर लें, hindi.letters@bbc.co.uk। नमस्कार।
आपकी राय के बाद अगर आज के कार्टून की बात करें तो हमारे साथी कीर्तिश ने जय शाह मामले में चुटकी ली है, जहां अखबार में खबर पड़ता है एक शख्स कहता है कि नेताओं और उनके रिश्तेदारों की कमाई ही नहीं, उनका मान भी बेहिसाब बढ़ रहा है। 100 करोड़ की मानहानि का ये मामला है। ये कार्टून आप bbchindi.com पर देख सकते हैं। वक्त विदा लेने का हो रहा है, लेकिन पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लेते हैं कुलदीप मिश्र से।
बीबीसी समाचार। गोधरा कांड में गुजरात हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है, जबकि 20 लोगों की उम्र कैद की सजा को बरकरार रखा है। अंतर्राष्ट्रीय रेडक्रॉस ने कहा है कि वह अफगानिस्तान में अपने कर्मचारियों की संख्या घटाने जा रहा है। इस साल यहां हुए चरमपंथी हमलों में उसके 7 कर्मचारियों की मौत हो गई और कई कर्मचारी अगवा भी किए गए। इस साल अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमरीका के रिचर्ड थेलर को दिया जाएगा। दो प्रमुख स्पेनिश पार्टियों ने कैटलन अलगाववादी नेता कार्लस पुजिमोंट पर आज़ादी का ऐलान न करने का दबाव बढ़ा दिया है। पुजिमोंट मंगलवार को कैटलन संसद सत्र को संबोधित करेंगे। जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने ऐलान किया है कि उनकी क्रिश्चियन डेमोक्रेट पार्टी अपनी सहयोगी बेवेरियन पार्टी के साथ इस पर एकमत हुई है कि एक साल में अधिकतम 2 लाख प्रवासियों को ही जर्मनी में प्रवेश दिया जाए। दक्षिण अफ्रीका में सरकारी वकीलों ने उस महिला से हत्या के आरोप वापस ले लिए हैं जिस पर अपनी बेटी से बलात्कार करने वाले की हत्या का आरोप था। वकीलों ने कहा है कि सफल अभियोजन के आसार बहुत कम थे। इटली की ओर जा रहे 8 शरणार्थियों की एक दुर्घटना में मौत हो गई है। उनकी नाव ट्यूनिशियाई नौसेना के एक जहाज से टकराने के बाद डूब गई। बीबीसी समाचार।
दिनभर में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन कर रहे थे दीपक जसरोटिया, फेसबुक लाइव आप तक पहुंचाया ब्रजेश मिश्र ने। आपसे अगली मुलाकात सुबह 6:30 बजे नमस्कार भारत में होगी। तब तक खबरों के अपडेट के लिए आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को सभी साथियों के साथ दीजिए अनुमति। नमस्कार।